अरे जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोपीनाथ राधे गोपीनाथ, राधा रमण राधा रमण, श्री राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर राधा दामोदर, राधे 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 राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, श्री राधे राधे जय श्री राधे, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। बोलो बोलो बोलो, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के इस सुंदर सायंकाल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। कार्तिक महीने का बहुत सुंदर कालावधि चल रहा है। हाँ, मनुष्य जीवन का जो सबसे मूल्यवान लाभ है उसका अंदर का कालावधि चल रहा है। मनुष्य का जीवन का काल जो है वो वैसे ही पवित्र काल है। जिस जीवन में भगवान को मिलने का अवसर आता है वो पवित्र काल होता है, भाग्यशाली काल होता है। उसमें कार्तिक दामोदर महीने का काल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों ज़्यादा मूल्यवान है? इस महीने में कुछ भगवान के लिए कार्य करेंगे तो बाकी समय जो कार्य करेंगे उससे लाखों गुना लाभ मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बोलिए हरे कृष्णा, बस आपको लाखों बार हरे कृष्णा बोलने का लाभ आपके अकाउंट में जमा हो गया। बाकी समय में बोलेंगे तो एक बार बोलेंगे तो एक बार का लाभ, कार्तिक महीने में बोलेंगे तो लाखों गुना। इसलिए मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त हो गई ना उसका पूरे पूरे उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि केवल मनुष्य की बुद्धि ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है। कुत्ते की बुद्धि, बिल्ली की बुद्धि, पंछी की बुद्धि, बंदर की बुद्धि, जानवर की बुद्धि, मछली की बुद्धि ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है। केवल हम ही ऐसे हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो या वृद्ध हो, मनुष्य है तो वो ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और उसी के लिए ये जीवन दिया गया है। वरना अगर जानवर की तरह जीना हो तो ये जीवन की ज़रूरत क्या है? चींटी के दिमाग में यानी सर में जितना दिमाग है उतना भी जीवन चलाने के लिए काफ़ी है। चींटी भी जी लेती है, इसमें क्या बड़ी बात है? वो भी खाती है, वो मेहनत करती है, दिन भर विश्राम करती है, अपनी रक्षा कर लेती है और समय पर बच्चे भी पैदा करके आगे का भी प्रजा को जन्म देती है कि नहीं? वो तो यही कार्य करना है तो फिर चींटी भाई उतना भी दिमाग काफ़ी है। कुत्ते का दिमाग भी काफ़ी है, कबूतर का दिमाग कितना होता है पता है आपको? इसमें भी इससे भी ये बड़ा है बहुत, इससे भी छोटा भी दिमाग होता है, लेकिन सब करने के लिए काफ़ी है। जो जो आप सोचते हैं करना चाहिए वो कर रहे हैं। मनुष्य का दिमाग जो है ना वो साइज़ में इतना, हाथी इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी में बहुत पावरफुल है। आपको पता है अगर इस दिमाग में जितना नॉलेज आप स्टोर कर सकते हो, हम लोग अभी किस में स्टोर करते हैं? GB, TB है ना, ऐसे स्टोर करते हैं ना। इसमें जितना नॉलेज आप स्टोर कर सकते हो उतना अगर आपको हार्ड डिस्क बनाना है तो आपको 40 स्क्वायर माइल्स की जगह चाहिए, तब उतना नॉलेज उसमें स्टोर होगा जितना इतने दिमाग में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब साइज बड़ा नहीं है, वॉल्यूम क्वालिटी है उसके अंदर। इतना सुंदर दिमाग हमको दिया है, किसके लिए दिया है? ये समझने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम लोग किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, ये सब प्रश्न केवल मनुष्य के जीवन में ही आप पूछ सकते हैं। बालक भी पूछ सकता है, बड़े भी पूछ सकते हैं, है ना। देखो बालक कितने प्रश्न पूछते हैं, मम्मा वो क्या है? बोले तो कौवा है मम्मा, वो क्या है? वो तोता है। कितने सवाल पूछते बच्चे, लेकिन सवाल पूछने की शक्ति केवल मनुष्य के बालक में ही है और मनुष्य में ही है और किस में नहीं है। और जब हम ये सवाल पूछते ना कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है और वो रिश्ता मुझे कैसे निभाना है, कैसे बनाना है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन के सबसे समर्पक प्रश्न हैं। बाकी सारे प्रश्न जो है ना, वो केवल पेट भरने के लिए होते हैं। ये प्रश्न आत्मा के स्तर पे होते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए बालक हो या वृद्ध, जब तक ये सवाल नहीं पूछता है, उसका मनुष्य जीवन शुरू नहीं होता है। जीवन तो शुरू हो गया, 10 साल गए, 20 साल गए, लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं शुरू हुआ, तो वो हमको शुरू करना है। तो ये महीने में, जैसे मैंने कल भी बताया था कि भगवान ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएं इस महीने में की है। प्रधान लीला तो हमने कल बताई, क्योंकि वो दामोदर भगवान को बांधा, भगवान माखन चोरी करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम हृदयस्य चौरम। आगे क्या बताओ? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्य, बोलो बोलो, पुरुषम नमामि। क्या अर्थ है इसका? वो ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए? नवनी चोरी करने के लिए, और गोपांगना नाम हृदयस्य चौरम, जो गोपियां हैं उनका हृदय भी चोरने में बहुत प्रसिद्ध है वो। और क्या क्या चोरते हैं वो? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो अनेक अनेक जन्मों से हमने अर्जित यानी जमा करके रखे हुए ऐसे सारे पाप भी वो हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे चौर अग्रगण्य यानी जो चोरी में सबसे माहिर है, अग्रगण्य यानी सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे है, ऐसे चौर अग्रगण्य को हम प्रणाम करते हैं। कोई चोर को प्रणाम करता है क्या, बताओ? कोई अगर वॉर में पीठ दिखाकर डर के भाग गया तो कोई उसका वर्णन करते क्या? वाह क्या बात है, क्या भागे आप, वाह बढ़िया भागे आप, ना बढ़िया भागे, क्या बताएं, कहाँ सीखे आपने भागना, हम भी भागना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान चोरी रण से भागते ना, तो न केवल उसका हम तारीफ करते हैं, वो उसका मूर्ति बना के रखा है, रण छोड़ दास, और दुनिया जाती है वहां पर प्रार्थना करने के लिए, रण छोड़ दास, रण छोड़ राय को भजने के लिए, पूजने के लिए, गौरव करने के लिए, है ना। वैसे भगवान जब चोरी करते ना, तो उनका चोरी का आज भी हम 5,500 साल हो गए अभी भी गुणगान कर रहे, क्या चोरी की, वाह क्या बात है। पर हम में से कोई चोरी करेगा तो इतना वो लांछनास्पद होगा, है ना, क्योंकि वो भगवान है। भगवान कोई काम करते ना तो वो काम नहीं होता है, उसको लीला कहते हैं। लीला, लीला और काम में क्या फर्क है? काम मजबूरी से करना पड़ता है, ड्यूटी है, क्या करे, अभी अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ता है। बच्चा रात को दस्त कर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, जगना तो पड़ेगा ही मुझे। वो काम होता है, काम कम, कर्तव्य, ड्यूटी, बंधन। लीला किसको कहते हैं, बोलो, लीला किसको कहते हैं? तो हृदय से की जाती है, ये पास्ट टाइम बोल रही है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना इसलिए। लीला यानी जो सहज की जाती है, प्रेम से की जाती है, जो करने से, करने वाले को आनंद आता है, देखने वाले को ज़्यादा आनंद आता है, और सुनने वाले को और भी ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि हम ना देख रहे हैं हाँ, लेकिन केवल सुन रहे हैं ना, देखने का समय तो गया, तभी अभी 5,000 साल हो गए उसको। तो इसलिए भगवान की माखन की चोरी आज भी गाई जाती है, लोग उसमें कविता बनाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं उसको, संगीतबद्ध करते हैं उसको, गाते हैं, क्योंकि वो भगवान ने किया हुआ कार्य है। और भगवान ने किया हुआ कार्य रण से भागने का होगा या चोरी का होगा, तो भी उसको सुनने से हमारा हृदय कष्टों से, दुखों से और बोझ से मुक्त हो जाता है, यही उसका महात्म्य है। इसलिए हरि कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, माखन चोरी की कथा भी अनंता। कितनी बार रण छोड़ के भाग गए भगवान, पता है आपको? एक बार तो काल यावन आया था, उसके साथ साथ जरासंध भी आया था, मथुरा में अटैक करने के लिए। लेकिन हमारे भगवान इतने इतने क्या कहें आपको, इतने सुंदर है हमारे भगवान। वो जो मथुरा के वासी थे ना, वो मथुरा के वासी कृष्ण के ही मथुरा के है ना, वो बोला महाराज 16 बार आक्रमण किया उसने, हाँ, और वो ये रणांगण में आक्रमण नहीं किया, हमारे शहर के सामने, गली के सामने, समझो अपने वासुकी के सामने और वशिष्ठ के सामने, समझो कोई बॉम्बारी हो गई, गोलाबारी हो गई, तलवार के युद्ध हो गया, तो एक दिन हो गया, ठीक है आप बोलेंगे अरे वाह ऐसा हुआ था, लेकिन रोज होगा तो क्या करेंगे आप। वैसे 16 बार करोड़ों की संज्ञा लेकर, सैन्य लेकर जरासंध ने वो सिटी में आक्रमण किया था, अच्छा आपके खिड़की के बाहर गोला बारूद हो रहा है, मांस निकल रहा है, खून निकल रहा है, लोग आ करके मर रहे हैं, तो 16 बार हो गया तो नागरिकों ने बहुत सहन लिया। अभी न्यूज़ आई आ रहा है 17 टाइम्स आ रहा है, 17वीं बार आ रहा है, तो सब लोग भगवान के पास गए, भगवान बहुत हो गया अभी हमको, अभी हमारे दरवाजे में पड़ोस में हमको ये सहन नहीं होगा, होने कोई बात नहीं, वो कल आएगा ना, आप सो जाओ आराम से। तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा कौन है, देवताओं का आर्किटेक्ट है वो, वैसा नहीं आप डिजाइन देंगे वन रूम किचन का, एक साल भर करता रहेगा वो, अभी भी टाइम है बोलता है, अभी भी नहीं हुआ है। अरे उसको बुलाया, बोला देखो समुद्र के पास जाकर ना जमीन रिक्लेम करना, यानी समुद्र को पीछे हटाना, जमीन पैदा करना, कितनी बड़ी ऑर्डर दिया बताया आपको, और रातों रात डिजाइन दिया, ऐसे मुंह से बताया डिक्टेशन, और पूरा द्वारका नगरी का डिस्क्रिप्शन दे दिया, मुझे ये रुक्मिणी का महल ऐसा कमलाकार चाहिए, मुझे सत्यभामा का पीले रंग का चाहिए, मुझे लक्ष्मणा का वो रंग का चाहिए, मुझे उसका वो रंग का चाहिए, 8 बड़े महल चाहिए, फिर बाद में 16,000 भी चाहिए, उसके बाद में हौज चाहिए, उसके बाद में गार्डन चाहिए, उसके बाद में रस्ते चाहिए, उसके बाद में क्या नहीं चाहिए, अपना तो 1 बेडरूम में क्या होता है, वो तो ऐसे चुटकी मारेगा सब बना देगा। लेकिन रातों रात पूरा नगरी बना दिया, रातों रात बना दिया, और फिर सब लोग सो रहे थे अपने घर पे, कहाँ पर, मथुरा में, नगरी कहाँ बना दिया, द्वारका, किधर है वो पता है आपको, कितना दूर है वो, तो यूपी में है, तो गुजरात में समुद्र के अंदर है, गुजरात में मतलब गुजरात में नहीं है, गुजरात के बाहर समुद्र के अंदर बनाया उसको। ये बात भी आश्चर्य वाली बात नहीं है, आश्चर्य वाली बात आगे है, सोते हुए मथुरा के नागरिकों को नींद में ही उठा लिया और नए घर पे सुला दिया, वो है ना क्या, मूवर्स एंड पैकर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ी, सामान के साथ में फिटिंग करके रातों रात सुला दिया, और जब ही सुप्रभात हुआ ना तो सब लोग द्वारका में उठे। बोलो आप, ये केवल भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। द्वारका के लोग भी, वो भी द्वारका के बन गए, पहले एड्रेस मथुरा का था उनका, मथुरा वाले द्वारका वाले बन गए, और सुबह ऐसे उठ गए कि अपने घर में उठे आराम से एकदम, नो टेंशन नो प्रेशर। वो सुबह उठ के पूछने रहे, अरे मेरी पैंट कहाँ गई, वो कहाँ पैक करके रखी है, 3-3 महीने लगते हैं घर शिफ्ट करने के बाद, कभी कभी मिलता ही नहीं कुछ वस्तु हमारी, सब अपनी जगह पर फिट कर दिया है। उसके बाद सबको सेटल करने के बाद पहले काल यावन आया, वो महाभारत की सेना है ना, महाभारत की सेना, कितनी सेना है महाभारत की, किसी को पता है, 18 अक्षौहिणी, ये कितना लेके आया था, 24 अक्षौहिणी, दोनों पार्टी का मिलके 18 था, ये अकेला 24 लेके आया था। तो कृष्ण द्वारका के गेट के बाहर आए और काल यावन ने आक्रमण किया, सावधान, तो कृष्ण आगे आगे आने लगे, उसको लगा युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, वो आगे आगे आए, समय समझ में ऐसे आया, वो क्रॉस करके आगे चला गया, युद्ध तो किया नहीं, तो उसको लगा कि डरपोक है बहुत, डरता है मुझसे इसलिए भाग गया, तो भागने लगे, तो ये भी भागने लगा, वो भागने लगे, अभी भागने लगा, बोला बहुत ही डरपोक है, हमने सुना था कि 16 बार उसने जरासंध को परास्त किया है अकेले भाई ने, दो भाई ने मिलकर, ये तो बहुत डरपोक निकला, और खास करके मुझे लेके डर रहा है, मतलब मैं कितना वीर हूँ। भागे 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 भागे, इतना भागे इतना भागे, पहाड़ पे चढ़ गए, ये भी रथ से उतर गया, बोले मेरा शत्रु जो है पैदल भाग रहा है, मैं भी पैदल ही भागता ना, उसको क्यों रथ से भागने की जरूरत क्या है, डर रहा है वैसे भी, पहाड़ में चले गए, ये भी पहाड़ के पीछे भाग रहा है, एक गुफा में घुस गए, अंदर जाके छुप गए, गुफा में ना एक व्यक्ति सो रहा था, उसका नाम है मुचुकुंद, वो देवताओं का एक बार सेनापति था, देवताओं के लिए बहुत युद्ध किया था उसने, बहुत भयंकर युद्ध किया था और देवताओं को जिताया था उसने। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने देवताओं को पूछा, देवताओं ने पूछा क्या चाहिए, वरदान मांगो, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया। तो वो ना इतना थका हुआ था, समझो आपको देवता लोग बोलते, देवता कितने, इंद्र वरुण चंद्र आके बोलते माता जी वरदान मांगो, तो आप बोलेंगे 10 मिनट दो में लिस्ट बना के आती हूँ, है ना। वो इतना थका हुआ था, उसने बोला मुझे सोना है बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू स्लीप। और इतना थका हुआ था, उसने बोला ऐसी नींद चाहिए मुझे कि कोई आया ना जगाने को और मैं जग गया ना, और जग के उसको देखा ना तो वो जल के भस्म होना चाहिए। मतलब क्या, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इतना सोना है, कोई बीच में आया भी गलती से वो मेरे नज़रों से जल के भस्म होना चाहिए। और तथास्तु, बाप रे क्या वरदान मांग रहा है, ले लो सो जाओ। तो वो गुफा में सोया हुआ था, अभी भगवान भाग रहे हैं, क्या बने भगवान, रण छोड़ के पीठ दिखा के भाग रहे, अंदर जाके छुप गए। लेकिन क्या किया ना, अपना ऊपर का वस्त्र है ना जैसे मैंने ये पहना ना, वो निकाल के वो सोने हुए आदमी के ऊपर बिछा दिया। वो कैसा सोया हुआ है, उसकी दाढ़ी उसके ऐसी बह रही है कई मीटर तक, उसके नाखून भी ऐसे कई मीटर तक बह रहे हैं, ऐसा इतना सत्ययुग से सोया हुआ है। तो वो आता है बाद में भाग भाग के कालियावन पीछे उसके, और देखता है अरे सोया हुआ है, अभी भेष बदल के सोया हुआ है, दाढ़ी बड़ा हुआ, नाखून बड़ा हुआ, एकदम अपना चादर ओढ़ के सो रहा है। बोलता है अरे डरपोक, तू कितना भी भेष बदलेगा मैं नहीं अब फंस जाऊंगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे डर कर ये भेष बदल कर सो रहे हो, अभी तुझे मृत्यु के दंड देता हूँ। ऐसा करके लात मारा उसको, तो जग गया बेचारा, सोया हुआ था। देखा आँख खोल के सामने कालयावन खड़ा है, देखते ही जल के भस्म हो गया। फिर हमारे ठाकुर जी आ गए अंदर से बाहर उसको दर्शन देने के लिए। अभी जहां पर शक्ति खर्च करने की आवश्यकता नहीं है वहां शक्ति खर्च करने की जरूरत क्या है। आपके पास बल है तो सब जगह बल दिखाने की जरूरत है क्या, कहीं दिमाग भी लगाओ ना, आराम से बैठो दिमाग लगा के काम करो। भगवान ने कहा ठीक है, लोग बोलेंगे रण छोड़ दास क्या फर्क पड़ता है, मेरी मेहनत तो बच गई ना। और वो मतलब एक काम तो उसको मारने का हो गया, दूसरा का काम क्या बताइए। वो मेरा भक्त जो है उसने देवताओं का इतना सेवा की है, इतनी सेवा की है, बैठ जाओ बेटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को अपने भक्त की सदैव चिंता होती है। वो भक्त जिसने मेरे भक्तों की सेवा की यानी देवताओं की, और उनका आशीर्वाद लेके सो रहा है, कितने युग बीत गए, सबको पता है कि सो रहा है, उसको जगाना चाहिए, लेकिन जगाने की हिम्मत कौन करेगा, कोई कर सकता है क्या, कितना भी प्रेम होगा तो उसको जगाएगा क्या, तो इसको मरना है। तो भगवान ने कहा मैं ही इसका उद्धार कर सकता हूँ। तो भगवान ने कालयावन को प्यादा बनाया और कालयावन को जलाया और इसको भी जगा दिया, उस बहाने दर्शन दिया। तो भगवान ने बोला वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगा होगा उसने, देखो भक्त भी कैसे बढ़िया होते हैं। उसने बोला इस गुफा में कोई नहीं है, केवल मैं और आप, और आप इतने दयालु हैं, मेरे लिए इतना बड़ा प्लानिंग बना के, दिमाग चला के, किसी को भी न जला के, शत्रु को जला के आपने मुझे भी जगाया है, मेरा भी उद्धार किया है, ये कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है इसको। मैं चाहता हूँ कि आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, कितने करुणा वाले हो, ये पूरे विश्व को पता चलना चाहिए। तो ये दर्शन जो आप मुझे दे रहे हैं ना, जो मैं देख रहा हूँ, वो विश्व को दिखना चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वो भगवान कौन बनकर आए, विट्ठल पांडुरंग बनकर आए, और वो कौन बन के आए, मुचुकुंद पुंडलिक बनकर आया। और पुंडलिक के जिंदगी में माता पिता की सेवा करते हुए भगवान विट्ठल आए, और फिर वो माता पिता की सेवा कर रहे थे, बोला रुको आप मेरा सेवा पूरा होने दो फिर मैं आपको देखता हूँ। तो सेवा पूरी हो गई, टर्न हो गए, तो फिर उन्होंने वही बोला रात का समय है, कोई देखने वाला नहीं है, माता पिता भी सो रहे हैं, और आप इतना सुंदर कमर पे हाथ रख के दर्शन दे रहे हैं, इतना मकर कुंडल पहने हुए हैं, घुंघराली बाल कंधे पर बह रहे हैं, इतनी सुंदर वैजयंती माला पहनी हुई है, और इतनी रात गए अपनी पत्नी को भी छोड़कर मुझे अकेले दर्शन देने के लिए आप आए हैं, लेकिन मेरा यही तमन्ना है कि ये आपका सुंदर दर्शन जो करुणा वाला दर्शन है वो पूरे विश्व को हो जाए, आप यहीं खड़े हो जाओ। बेचारे विट्ठल जी वहीं खड़े हो गए, आज भी खड़े हैं, सोचो आप। तो अगर वो ऐसा वरदान नहीं मांगते तो विट्ठल अपना दर्शन देके आश्रम देके चले जाते, आपको हमको मिलते क्या? नहीं मिलते। भक्त जो भी करता है ना वो विश्व के कल्याण के लिए करता है, छोटा हो या बड़ा हो, सोचता सब विश्व की है। एक काम हो गया भागने का, फिर वो वहां पर उसका उद्धार हो गया उस जन्म में यानी कृष्ण लीला में, तो वापस आ गए तो जरासंध आ गया, कितनी सेना लेके आ गया बताया ना नंबर अभी आपको 24। ध्यान से सुनना जरूरी है, कृष्ण के बारे में बहुत ध्यान से सुनो। तो वो लेकर आए तो उसने भी चैलेंज किया, तो ये फिर दोनों भाई आए और उसको क्रॉस करके चले चलने लगे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, ये भी भाग रहे भाग रहे, डरपोक डरपोक। 16 बार जीत गया तो क्या हुआ, 17 बार भाग रहे हो, डरपोक भाग रहे भाग रहे। सीधे ऊपर पहाड़ पे चढ़े जरासंध ने क्या किया, पहाड़ को सब जगह पे आग लगा दिया, कहीं से भी उतरो जलने वाले हो। क्यों भाग रहे भगवान, युद्ध क्यों नहीं कर रहे? उसी समय नागपुर में यानी उस समय के विदर्भ देश में रुक्मिणी बुला रही है, भगवान मेरा अभी कुछ ही देर में मंगल होने वाला है शिशुपाल के साथ, जो मुझे नहीं करना है, मैं आपको ब्राह्मण भेजकर खत भेज रही हूँ और संदेश दे रही हूँ, आपको एक रात के बीच में आना है, एक बार विवाह हो गया तो फिर मैं क्या आत्महत्या करने के लायक हो जाऊँगी। तो वो पुकार वो सुन रहे हैं, इसलिए वो युद्ध करने में समय वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि युद्ध करने में टाइम लगता है ना, हमें लग गया समझो युद्ध में, हो सकता है 8 दिन भी जा सकते हैं, 10 दिन जा सकते हैं, तब तक रुक्मिणी कहेगी मैं आत्महत्या कर लूँगी। उन्होंने कहा मैं रणछोड़ कहलवाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं मेरे भक्त को बचाऊँगा। तो क्या किया भगवान ने, वो पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ को आग लग रही है, दोनों भैया ने पहाड़ से छलांग लगाई आग से बहुत दूर और सीधे द्वारका में प्रवेश किया, रथ लिया, ओवरनाइट कृष्ण जो है वो नागपुर पहुंच गए विदर्भ में, बहुत दूर है आज भी वो, कहते हवा की गति से 4 घोड़ों को दौड़ाया उन्होंने, ओवरनाइट ट्रैवलिंग किया उन्होंने और सुबह सुबह कौंडिन्यपुर पहुंच गए और वहाँ पर एकदम राइट टाइम पे रुक्मिणी का हरण किया और शिशुपाल से उसको बचाया और अपनी पटरानी बनाया। भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए रणछोड़ नाम का अभी लांछन स्वीकार करने को तैयार है, वो लांछन नहीं है, वो अभी गुणगान करने का नाम है, वो पूरा मंदिर बना हुआ है रणछोड़ दास डाकोर में। इसलिए ऐसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, इन लीलाओं का श्रवण करने से आत्मा की शुद्धि होती है, दुख दूर भाग जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं और आनंद का उदय होता है। आप कितने भी दुखी होंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे वाक्य को कुछ विश्वास के साथ स्वीकार करना, आपको कितना भी दुख हो गया जीवन में, असह्य दुख हो गया कि टूट रहे हैं आप, उस समय कोई टेप वेप होगा रिकॉर्ड किया हुआ या कोई किताब होगी, कृष्ण की कथा पढ़ना और करके देखना और फिर मुझे फ़ोन करके बताना प्रभु जी क्या हो गया। आप मुझे यकीन से कहेंगे हम दुख में थे वो कथा पढ़ी और हम दुख से मुक्त हो गए, कुछ क्षण के लिए को ना हो, दुख वैसा ही था वहीं पर था लेकिन हम मुक्त हो गए, दुखों का जो अनुभव था जो आंसू बह रहे थे वो खुशी में बदल गए। ये भगवान की महिमा। लोग सोचते हैं कि भक्त लोग पागल होते हैं, क्या दिन रात कृष्ण कृष्ण, रास्ते में कृष्ण, माला में कृष्ण, इधर काम पे कृष्ण, इधर कृष्ण, ट्रेन में जा रहे उधर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते, पागल हो गए पूरे। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पागल नहीं बोलते हैं, तो दिन रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, सोते नहीं जागते नहीं, सब कुछ यही वही वही सोचते हैं, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तभी कोई बोलता नहीं, बोला ये नेचुरल है ना, वो यंग है लड़का लड़की तो क्या करेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन भक्त अगर भगवान के प्रेम में पागल हो गया, दिन रात उसका नाम ले रहा है, तो उसको बोलेंगे ये तो भटके हुए लोग हैं। अभी आप ये जरूर करके देखना, हाँ भगवान की अनंत लीलाएं हैं, कोई कमी नहीं है, कोई मोनोटोनस नहीं है, सेम सेम नहीं है, बहुत वैरायटी है। अभी कल माखन चोरी की कथा बताई, आज की कथा सुन लो, बाद में एग्जाम लूंगा क्विज, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो अभी भगवान को, भगवान सब लोग सब जगह पे माखन चोरी कर रहे हैं, और सब गोपियां जो है वो जा जा के कंप्लेन कर रही है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये मटके से चोरी करता है, नीचे से उतारता है, ऊपर से फोड़ देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कितने सारे कंप्लेंट्स है। तो मैया का एक जवाब क्या है, बोलो क्या एक जवाब है मैया का, जवाब क्या है, एक स्टैंडर्ड जवाब है मैया का, क्या जवाब है, रंगे हाथ पकड़ो। मैं कैसे मानूंगी यकीन। तो अभी गोपी ढूंढ रही है कभी रंगे हाथ पकड़ने का। तो एक गोपी के घर पे इसके दोनों हाथ है ना इधर तक, इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में, क्या कहते हैं, कोहनी, कोहनी तक डूबे हुए मक्खन में। कभी सोचा है आपने, अपने घर में, अपने घर में इतना मक्खन होता भी नहीं कि हाथ डूब जाए उसके अंदर, उंगली डूबी तो भी बहुत है, क्योंकि उस जमाने में तो ऐसे मटके होते थे हमारे साइज के। आज भी यशोदा का एक मटका है नंदगांव में, है माठ, नंदगांव में एक ऐसा माठ है, तो मैं उसके अंदर खड़ा रहेगा ना तो मुझसे भी ऊंचा है वो। उसमें नंद यशोदा मैया दही का मंथन करती थी, कई सारे थे सब नष्ट हो गए, एक उन्होंने बचा के रखा है, उसको भी ऐसा पिंजरा बना के कैद करके रखा है, उसके अंदर है वो, हम दर्शन करते हैं उसका। तो सोचो अभी वो कन्हैया दोनों हाथ डुबा के मक्खन में खड़ा है, उसके होंठों पर भी मक्खन लगा हुआ है, चाट भी रहा है, खा भी रहा है, मतलब रंगे हाथ हो गया कि नहीं, मुंह में भी लगा है, हाथ में भी लगा है। तो गोपी आती है, हे पकड़ो इसको पकड़ो, तुम मक्खन चोरी कर रहे हो। बोले नहीं मैं माखन नहीं चोरी कर रहा हूँ, मैं माखन चोरी करके कहाँ खा रहा हूँ, तो क्या कर रहे हो। तो अभी पूरी स्टोरी बताता है, ध्यान से सुनो, अरे स्टोरी इतनी रोचक है। अभी वो देखो, अभी आप समझो किसी को मक्खन चोरी करते पकड़ा, हाथ भी मक्खन में, मुंह में मक्खन है, और वो बोल रहा है मैंने मक्खन नहीं खाया और चोरी भी नहीं किया, तो आप क्या कहोगे उसको। चलो बोल भाई, चलो बोल, क्या बोल रहे हैं। बोले मैं बाहर से आ रहा था, मैं यहाँ से ऐसे ही अकेले गुजर रहा था, तो देखा आपके दरवाजे में बड़ी बड़ी चींटियों की लाइन लगी हुई है, तो मुझे कुतूहल हुआ कि चींटियां कहाँ जा रही है बाहर से, तो देखा तो अंदर जा रही है, तो मैं आपके दरवाजे के अंदर आया, अंदर आया तो अंदर अंदर चींटियों की लाइन के आगे 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 आया, आगे 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 आया, तो देखा तो मटके तक जा रही है, मटके तक जा रही है, फिर देखा मटके में कहाँ जा रही है, तो मटके में चढ़ रही है, मटके में चढ़ के ऐसे ऐसे चढ़ के फिर वो ऐसे अंदर जा रही है, और देखा तो मक्खन के अंदर मक्खी है, चींटी है, मक्खन के अंदर चींटी है। मुझे लगा आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतना गाय को चराते हो, कहाँ कहाँ सिलेक्टेड घास को चराते हो, और फिर वो उसको खिला पिला के फिर उसका दूध बनता है, फिर दूध निकालते हो, फिर दूध को गर्म करते हो, फिर उसको जामुन लगाते हो, जमाते हो रात भर, फिर मंथन करते हो, फिर मक्खन इकट्ठा करते हो, कितना मेहनत करते हो आप, और वो इतने मेहनत करके अर्जित किए हुए मक्खन में चींटी। तो मुझे चींटियों से मक्खन को मुक्त करना चाहिए, ऐसे सेवा भाव मेरे मन में आया, तो मैं फिर काम पे लग गया। कई हजारों चींटियां थी, इतनी लाइन लगाकर जल्दी जल्दी से अंदर घुस रही थी, मैंने एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, एक एक करके निकालना शुरू कर, एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। उतने में पता चला कि मक्खी जो चींटी है ना वो बहुत अंदर भी घुस गई है, तो मैं अंदर जाने लगा, हाथ डाला अंदर तो अंदर से भी निकालने लगा, और गहराई में मिला तो और भी निकालने लगा। उतने में क्या हुआ, देखो कितना रोचक स्टोरी बता रहा है कृष्ण। उतने में क्या हुआ, कुछ चींटियां मेरे हाथ पे चढ़ गई, हो सकता है ना, हजारों चींटी लाइन से जा रही है, डिस्टर्ब नहीं करेगा तो जब लाइन से जाती रहेगी, कोई डिस्टर्ब करेगा तो इधर उधर हो जाएगी, कुछ हाथ पे पाँव पे चढ़ेगी कि नहीं। तो कुछ चींटी मेरे हाथ पे चढ़ गई, फिर कुछ चींटी मेरे कोहनी पे आ गई, कुछ चींटी बाजू में आ गई, कुछ चींटी कंधे में आ गई, गले में आ गई, मतलब नेक कंठ में आ गई, फिर गाल पे आ गई, फिर होंठों पे आ गई, इतनी गुदगुदी, आपको हो रही गुदगुदी सुन के। तो वो जब होठों पे आई तो बहुत गुदगुदी हुई, अभी मैं क्या करूं, हाथ मेरे मक्खन में है, निकालूं तो और चींटियां अंदर जाएंगी, तो इतनी गुदगुदी हुई अकेले रहा नहीं गया, एक हाथ बाहर निकाला और ऐसे होठों से घुमाया उस चींटी को निकालने के लिए, और फिर हाथ का माखन होठों पे लग गया, फिर मेरी जबान कब बाहर आई और कब उसको मैंने चाटा मुझे पता नहीं चला। और आप भी बताओ, इतना सुंदर मक्खन आपने बनाया, किसी के होठों पे आ जाए तो चाटना कोई गुनाह है क्या, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, उस तरह से ये मैंने चाटा, लेकिन मैंने माखन चोरी करके खाया नहीं है, क्या कहे ऐसे बालक को, है ना, इतना होशियार है देखो। ये स्टोरी भी बहुत कन्विंसिंग है ना, कि आपके मक्खन को बचाने के लिए इतना सब मेहनत की मैंने। दूसरी बार भी ऐसा ही, किसी के घर में ऐसा पूरा हाथ डुबाया हुआ मिल रहा है और खाते हुए भी देखा उसने, अच्छी तरह से खा रहा है दोनों हाथ से। जब गोपी पहुंचती है तो कहती है, मैंने नहीं माखन खाया, फिर क्या कर रहे हो? वो मेरे माँ ने ना दोनों हाथों में यहाँ तक ऐसे जेवर पहन के रखे हैं। वो क्या होता है, रूबी का अनुवाद क्या है? रूबी, रूबी, व्हाट इज रूबी? लाल मणि, माणिक, माणिक। लाल रंग का कौन सा होता है? एक हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है क्या? पाचू। और लाल रंग का क्या होता है? माणिक। एक होता है मोती, एक होता है सोना, एक होता है हीरा। लेकिन ब्लू कलर का सैफायर होता है, नीलमणि। हाँ, इसमें ना लाल रंग का होता ना और हीरा, ये दो बहुत गर्म होते हैं। लाल रंग का और हीरा उस स्वभाव से बहुत गर्म होता है, इसलिए जिनको पित्त की पकड़ होती है ना उनको ज़्यादा हीरा पहनने को मना कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। तो ये हीरे, लाल मणि, सारे जो जितने भी अलंकार हैं ना, तो मेरी मैया ने मुझे अंगूठे में पहनाए हैं, कंगन के रूप में पहनाए हैं, बाजूबंद के रूप में पहनाए, सब प्रकार के पहनाए। तो मुझे ना बहुत मेरे हाथ जल रहे थे, और मैंने संतों से सुना है, देखो बालक बता रहा है, संतों से मैंने सुना है जब भी हाथ जलते हैं तो मक्खन में डुबाना चाहिए, क्योंकि मक्खन बहुत ठंडा होता है स्वभाव से और गुण से। मक्खन, दही ठंडा होता है, दूध थोड़ा गर्म होता है, दूध पिएंगे तो 10 लगते हैं, दही पिएंगे तो 10 रुक जाते हैं। तो इसलिए मैंने मक्खन में हाथ डुबा के रखा है। मैं तुम्हारे माखन के लिए नहीं आया हूँ, मेरी मैया बहुत बढ़िया माखन बनाती है, इधर क्यों आऊँ मैं? लेकिन रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते मुझे वो गर्मी सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने रास्ते में इलाज कर लिया, है कि नहीं? देखो आप सब लोग इतना प्रेम से हंस रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे किसकी कहानी बता रहे हैं, चोर की कहानी बता रहे हैं। ये क्या कहानी, बस चोर की कहानी सुनने का समय है क्या? लेकिन कौन चोरी कर रहा है? श्री कृष्ण चोरी कर रहे हैं, बाल कृष्ण चोरी कर रहे हैं, इसलिए सबको आनंद आ रहा है। और आपको बता रहा हूँ, आपको आनंद ही केवल नहीं आ रहा है, आपके हृदय के अंदर के सारे कष्ट भी दूर हो रहे हैं, जन्म जन्मांतर के कष्ट भी दूर हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे कृष्ण भगवान हैं, इनकी माखन चोरी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। अभी कार्तिक महीने में हमारे भक्तों ने बड़े प्रेम से इधर दीपदान, उधर दीपदान, कल्पतरु में दीपदान, सृष्टि में दीपदान, वासुकी में दीपदान, वशिष्ठा में दीपदान, सब जगह दीपदान ही बना के रखा है। आते रहिए और अधिक कहानियाँ सुनते रहिए, क्योंकि भगवान ने केवल एक बार माखन चोरी नहीं किया है, वो सभी करोड़ों गोपियों को आनंद देने के लिए आए थे, सबके घर पर जाके चोरी किया उन्होंने। और गोपियाँ भी किसी चतुर थी, ऊपर ऊपर से कंप्लेंट करेंगी कि तुम्हारा लाला, कुछ सिखाओ उसको, राजा का पुत्र है वो, सब जगह जाके चोरी करता है, कुछ सिखाओ उसको अच्छी तरह से, कंप्लेंट कर रहे हैं, कितनी नामुश्की है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी सब गोपियों के घर जा जाकर चोरी कर, एक घर पे चोरी किया तो गोपी ने कहा, हे चोर, चोर नंबर वन, बदमाश हो तुम। तो वो कहता है, तुम चोर हो, ये मेरा माखन है, तुम लोग रखे हो अपने घर पे, मैं मेरा माखन खाने आया तो मुझे चोर बोलते हो। तो गोपियाँ जा कंप्लेंट कर रही है, बड़ा उद्दंड बालक है तुम्हारा, हमारे घर पे आके हमारा मक्खन चोरी करता है और मुझे चोर बोलता है। लेकिन आप मुझे बताओ, कृष्ण सत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं? बताओ, विश्व का सारा मक्खन किसका है? विश्व किसका है? गाय किसकी है? जमीन किसकी है? बारिश कौन गिराता है? अरे, पृथ्वी को बनाया किसने? ये सब अगर उनका है तो माखन भी उनका है, और वो उनका ही माखन आके खाए तो उसको हम चोर बोलेंगे क्या? लेकिन उनका माखन जो अपना समझता है वही चोर है। लेकिन वो बालक है ना, उनकी बातों को सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है उनको, तो लग रहा है बालक कितना नटखट है, कितना क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन बालक सत्य होने पर भी प्रेम का इतना प्रभाव है, उनको समझता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। जैसे कभी कभी कृष्ण अपने माता को बोलते थे, आप जैसे बांधा था ना, हमें कल बताना रह गया, वो लंबी कहानी कितनी छोटी बताएंगे उसको, जो बांध के रखा था ना कृष्ण को माता ने, तो बलराम जी आए और देखा छोटे भैया को बांध के रखा है, तो कहते हैं कि अरे कहाँ गए थे बलराम भैया आप? देखो आप नहीं थे तो मुझे बांध दिया, वो जाके मैया को बोलो और मुझे छुड़वा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे बलराम जी गए मैया के पास, बोले मैं भी मेरा कुछ दिमाग लगाता हूँ। बोलते मैया आपको पता है आपने किसने किसको बांधा है? बोलते हैं मालूम है मुझे। नहीं आपको नहीं मालूम है, जिसको बांधा है ना भगवान है। वो पिछले जन्म में नरसिंह भगवान था, उसके बाद में वामन बना, उसके बाद उसके पहले मत्स्य कुर्म भी बना था, वही राम था, उसने रावण का वध किया है। अच्छा मतलब वो ऐसा सुनते नहीं है, अच्छा ऐसा क्या ऐसा नहीं, वो अच्छा राम है हाँ नरसिंह है, अच्छा और तुम कौन हो? तो मैं अनंत शेष हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ। तो उसने क्या जवाब दिया? अरे सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या? डंडा उठाया और भगा दिया उसको। और वो जो बड़े अनंत शेष का क्या बोलते ना बड़ा बहाना कर रहे थे, जाके दौड़ के कृष्ण के पास आए, बोले मैया का इलाज मैं नहीं कर सकता, तुम रहो बंदे रहो, मेरे बस की बात नहीं है। अभी वो बलराम जी सत्य बोल रहे कि झूठ बोल रहे बताऊँ? सत्य बोल रहे वो, लेकिन माता का प्रेम का प्रभाव इतना है माता के ऊपर, माता को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बालक क्या बोल रहा है, दंडा देके भगा रही है अनंत शेष को, भगा रही है। सोचो आप, ये है ब्रज का महत्व। ब्रज में वो जो अनंत शेष है, जो कृष्ण है, जो विष्णु है, वो ऐसे बालक बनकर रेंग रहे हैं, वहां पर बंधे जा रहे हैं, उनको बांध के रखा है। बोलो आपको पता है इनको मिलना कितना दुर्लभ है? वो कहता ना योगी खोजत, तपी खोजत, ध्यानी खोजत, ज्ञानी खोजत, सब ढूंढ रहे उनको। जन्म जन्मांतर तक योग कर रहे, तप कर रहे, प्राणायाम कर रहे, ज्ञान अर्जित कर रहे और ढूंढ रहे। तो कहते हैं कि उनके 20 नाखून होते ना, पांच हाथ के, पांच वो हाथ के, दो 10 पैर के, 20 नाखून में से अनंत किरण निकलते हैं प्रकाश के, ब्रह्म ज्योति, उसमें से एक किरण भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है अनेक जन्मों के बाद। इतने दुर्लभ भगवान है जिनका नाखून तो दूर रहा, नाखून से निकलने वाला किरण भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो उसको शरीर भी है, उसको मुख भी है। और ऐसे पूरे भगवान को जिसके नाखून से निकलने वाला किरण भी उसके पकड़ में नहीं आता है योगी के, वो पूरे भगवान को यशोदा मैया कोई तप नहीं करती है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ती है, उसको बांध के रखा है उसने। और भी एक बड़ी बात है उससे, माँ तो माँ है बांध के रखा है, लेकिन गोपियाँ क्या करती है, ताको बांधियो तेने लटकन में, आपके बाल होते हैं लंबे, वो बाल के अंदर उसको बांध के गोपियाँ घसीट के ले जा रही है। रस्ते पे सामान रखा है उनको उठा के ले जाना है, बोलते हैं नेक हेल उठा जा रे हे छोरा नंद जू को, हे नंद जू का छोरा थोड़ा सा वजन उठा के सर पे रखो, बोले क्या दोगे उसके बदले में? वो थोड़ा माखन दूंगी। बोले पहले दो? नहीं पहले उठा के रखो। तो फिर वो उठा के सर पे रखेगा तो उसको हाथ में इतना सा मक्खन देंगे, वो चाटेगा, बोला और दो, तो और गोपी बोलेगी मेरा भी उठा। चुल्लू भर छाछ देके अहिर की छोरियां नाच नचावे, गोपियां नचा रही है उनको, किसको नचा रही है? परम भगवान को, सृष्टि के नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक को, प्रेम के कारण वश में करके अपना बालक बना लिया है, गुलाम बना लिया है, सेवक बना लिया है, उसमें सेवा ले रहे हो, हेल उठा रहे हैं, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। कभी गोपियाँ क्या बोलती है, नाच के दिखाओ। नहीं पहले वो आके माखन मांगते हैं, बोले पहले डांस करके दिखाओ। तो डांस करते हैं, ठुमक ठुमक के नाचते हैं, फिर हाथ उप आगे करते हैं, फिर थोड़ा चुल्लू पर छाछ देते हैं, तो और आगे करता है, बोला और नाचो। ऐसे कई बार नचाते हैं और हर बार थोड़ा 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 छाछ पिलाते हैं। वो छाछ थोड़ा थोड़ा लेने के लिए वैकुंठ छोड़ के आए हैं वो इधर, गोपियों का छाछ। ये प्रेम की महिमा है और ये प्रेम की लीला है और ये प्रेम का धाम है। और ये सारी लीलाएं ये दामोदर महीने में वृंदावन धाम में, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाने में, सब जगह हुई है। अगर भगवान ये लीला प्राइवेट में करते तो हम लोग वासुकी 12 में बैठ के सुनते क्या उसको? नहीं, लीला को पब्लिक किया है ना, इसलिए वो सबको पता चला है, संतों ने भी सुनाया है, इसलिए हम भी बोल सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, आप सुनेंगे और किसी को बोलेंगे। इस प्रकार से इस लीला का प्रचार होगा, सबके ध्यान में प्रचार होगा और सब लोग खुश हो जाएंगे। आप सोचो अभी जो मैंने बताया आप सब लोग सुन रहे हैं, अगर जीवन के अंतिम समय में आपको ये याद आया और याद करते करते आपके प्राण छूटे, क्या होगा फिर? सब लोग भगवत धाम पहुंचेंगे। और क्या गीत गाएंगे पता है आपको? जब आप लोग भगवत धाम में पहुंचेंगे तो कौन सा गीत गाएंगे? गाके सुनाऊं जो आप लोग गाने वाले हैं भगवत धाम के जाने के बाद? जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। वही है भगवान का धाम, ना कोई गम नहीं है, कोई आंसू नहीं है, बस प्यार ही प्यार पलता है। भगवान रहते हैं, उनकी माँ रहती है, उसकी गोपी रहती है, उसके पति रहते हैं, पिताजी रहते हैं, सब रहते हैं, और आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कुछ नहीं। तो हम सब लोग आपको, सबको हम इन्विटेशन दे रहे हैं, आप भी उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते का अंजाम भगवान का धाम है। उस रास्ते में चलते समय भी, भगवान के धाम पहुंचने के पहले भी भगवान के धाम का अनुभव शुरू होता है। अभी पहुंचना दूर है, रास्ते में भी आनंद आ रहा है जहाँ जाना है, और निश्चित रूप से वो आनंद जो आपको जाते समय आ रहा है वो आपको विश्वास दिला रहा है आगे भी है। इसलिए हम चलते रहेंगे, बीच में हॉल्ट लेके यू टर्न नहीं लेंगे, आगे ही चलते रहेंगे। जिसको इस मार्ग का स्वाद आ गया ना, फिर वो पीछे यू टर्न नहीं मारता है कभी, वो आगे ही बढ़ता है। कितनी भी कठिनाई हो, अवरोध हो, बंधन हो, स्पीड ब्रेकर हो, वो तो आगे जाते रहेगा। जब तक उसको अपने भगवान का धाम का दर्शन नहीं होगा, तब तक भक्तों का सहारा हाथ पकड़ के गीत गाते हुए भगवान के धाम पे जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे।